खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और सुनाएं, सब ठीक है जी? हालेलुया। सो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से सीखें, मैं चाहता हूं कि आए हम सब खुदा के बेटे और बेटियां खुदा के हुजूर झुकें और उसकी हिकमत और दनाई मांगें, ताकि आज हम जो कुछ भी सीखें ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि उस हकीकत को कबूल करके दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, तेरा कलाम जिंदा और पाक है। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम हमारे लिए जिंदगी की रोटी है। तेरा कलाम उन कीमती और अनमोल मोतियों से भी कीमती है। सो खुदा बाप, आज हम जो कुछ भी सीखें, तेरा पाक रूह हम सब की रहनुमाई करे और हमारी तमाम तवज्जो तेरी तरफ लगी रहे और इब्लीस के हर झूठ, फरेब, परेशानी, दुख, तकलीफ को हमारी तवज्जो से दूर कर, ताकि तेरे कलाम पर नज़र करें, क्योंकि तू ऐसे प्रस्ताद ढूंढता है जो तेरी प्रस्तुति रूह और सच्चाई से करें। सो सब कुछ आज के कलाम के हिस्सा से हम सबको बड़ी बरकत दे। मेरे लबों का रखवाला बानी यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। जो बहन भाई कलामे खुदा पढ़ सकते हैं मेरे साथ, निकालें नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दूसरा बाप। हम 5वीं आयत से 10वीं आयत तक इस हवाला को पढ़ेंगे और आज 6ठी आयत में से सीखेंगे। और आपने पिछले दिनों में, पिछले महीनों से पहली 4 आयत में से सीखा, और कल हमने जो बातें सीखी थी, जो सच्चाई हमने सीखी थी, इससे पहले भी उस पर गौर करें, मैं चाहता हूं हम 5वीं आयत से इस हवाला को पढ़ें। इफ़सियों 2 बाप उसकी 5वीं आयत। खुदावंद का कलाम कहता है, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यसू में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यसू में हम पर है आने वाले ज़माने में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यसू में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया, आमेन। सो हमने 5वीं आयत में से देखा था कि जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो मसीह ने हमको जिंदा किया। हमने 3 बातें कल गौर की, जिंदा किया, जलाए गए और आसमानी मकामों पर बिठाया। और मैं चाहता हूं कि इस बात पर गौर करें और ये सच अपनी जिंदगी में जड़ पकड़ने दें, क्योंकि बहुत दफा हम देखते हैं जब किसी खानदान में, जब कलीसिया में, या किसी और शहर में, जब फौतगी, या कोई फौतगी से मुराद यानी कि जब कोई मर जाता है, सो बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि ये कहाँ गया या इसके साथ क्या होगा, क्या वो खुदा के तख्त के सामने हाजिर हुआ या फिर वो हमेशा की उस आग में गया या गई। आपको याद दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि हम सब इसमें मजबूती से ईमान रखें कि जो कोई खुदावंद यसु मसीह में है, यसु मसीह ने ये बात मरियम और मार्था से करते हुए कही थी जब वो अपने भाई लाजर के बारे में पूछ रही थी और बातचीत कर रही थी। तो यसु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, खां वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। ये बात हमें याद रखने की जरूरत है कि जब हम इस जमीन पर से फारग होते हैं तो हम खुदावंद यसु मसीह की हजूरी में जाएंगे, उसकी हजूरी, उसके जलाल, उसके तख्त के सामने, उस उम्दा जगह के सामने जिसके लिए दाऊद नबी कहता है कि इस जमीन पर और बादशाह के दरबार में 1,000 साल और 1,000 दिन गुजारने से बेहतर है कि मैं एक दिन खुदा की हजूरी में गुजारूं। और वो सादा तौर पर ये कह रहा है कि मेरी रूह, मेरी जान खुदावन की तहाई और प्यासी है और उसकी मुश्ताक है कि उसकी हजूरी में रहे। और खुदावन की हजूरी आराम की जगह है। खुदावन यीशु मसीह का तख्त जलाल से पुर है और वो ऐसी जगह है जहां पर ना कोई दुख, ना तकलीफ, ना कोई आंसू, ना कोई परेशानी, ना कोई फिक्र होगी। और ये अबदी सुकून है जिसे खुदावन यीशु मसीह की हजूरी कहा गया है बाइबल मुकद्दस में, जिसे खुदावन यीशु मसीह के कलाम में कहा गया है कि तू आज ही मेरे साथ मेरे बाप के तख्त के सामने होगा। सो इसे अबदी जिंदगी भी कहा गया है कि अबदी जिंदगी खुदा के और यीशु मसीह के साथ गुजारना। सो 5वीं आयत में पालूस कहता है, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से निजात मिली है। और 6वीं आयत पर गौर करेंगे, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल अपने लिखने वालों को, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें सिखाना चाहता है कि हम मसीह यीशु में शामिल करके, यानी कि यीशु मसीह दफनाया गया, मुर्दों में से जी उठा और आसमानी मुकामों पर जा बैठा है। और वो बताना चाहता है कि हर कोई जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, खा वो लड़की है, लड़का है, माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, कोई भी है, किसी भी नस्ल, किसी भी कबीले से, किसी भी खानदान से, कोई भी जुबान बोलता हो, गरीब हो, अमीर हो, गुलाम हो, आजाद हो, जो कोई भी है, जैसे यीशु मसीह आसमानी मकामों पर जा बैठा, वैसे ही वो कहता है कि तुम्हारी भी रूहानी हालत ये है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब बहन भाई, बुजुर्ग माएं और बुजुर्ग नौजवान लड़के लड़कियां सब इस सच से वाकिफ हों, ताकि जब हम किसी को देखें मातम की सफ पर, जिसे कहा जाता है कि जहां पर हम सब इकट्ठे होते हैं फौतगी वाले घर में, तो हम उस खानदान को तसल्ली देने वाले बने कि अगर कोई यीशु मसीह में मरता है तो उसके लिए हमें खुशी करने की जरूरत है, क्योंकि वो इस दुनिया के दुखों मुसीबतों से निकलकर खुदा के सुकून में जा चुका है और जा चुकी है। सो यहां पर पालूस रसूल तवज्जो दिलाना चाहता है कि मसीह में शामिल करके तुमको जलाया, यानी कि जिंदा किया, जिंदा किया और जलाया, यानी कि मुर्दों में से जलाकर तुम्हें आसमानी मुकामों पर बिठाया। ये मेरी और आप सब की रूहानी हालत है, क्योंकि यीशु मसीह आसमानी मुकामों पर मौजूद है मेरे साथ। इफिसियों पहला बाप उसकी 20वीं 19वीं आयत को देखें, 19वीं और 20वीं आयत इस बात के बारे में बयान करती है कि यीशु मसीह कहां पर है। इफिसियों पहला बाप उसकी 19वीं और 20वीं आयत, और हम ईमान लाने वालों के लिए, यानी जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, यानी कि खुदा की वो बड़ी कुदरत जिसे रूहुल कुद्दस कहा गया है बेहद है, ला इंतहा, यानी कि ऐसी कुदरत जो बयान से बाहर है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफक, रूहुल कुद्दस की कुव्वत के मुआफक, 20वीं आयत, जो उसने, किसने, खुदावन खुदा ने मसीह में की, यानी कि यीशु मसीह में जाहिर की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर, यानी कब्र में से जिंदा किया, तीसरे दिन मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया। आपको याद होगा कि यीशु मसीह जब अपने शिगिर्दों से मिला और 40 दिन तक जमीन पर रहे और फिर आसमान पर उठाए गए, और यीशु मसीह कहां पर है, आसमान पर अपने बाप की दाहिनी तरफ तख्त पर बैठा हुआ है। सो पालूस कहता है कि तुम भी यसु मसीह में शामिल करके जिस तरह यसु मसीह दफनाया गया, तुम भी रूहानी तौर पर मर गए और अब रूहानी तौर पर जिंदा हो। और तुम्हारी हालत क्या है? तुम पे रूहानी तौर पर आसमानी मकामों पर मौजूद हो। बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो यसु मसीह ने तीन मुर्दों को जिंदा किया, और खुदा का कलाम इस बात का गवाह है। और ये तीन मुर्दे जो जिंदा किए गए इस बात की तस्वीर है कि जब हम मर जाएंगे तो फिर हमें आसमान पर हमेशा की जिंदगी, और जिसे कहा गया है दोबारा जी उठेंगे। जिस तरह यसु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हमें भी जिंदा किया जाएगा। और ये हमारी उम्मीद है, ये हमारा ईमान है बामुताबक बाइबल मुकद्दस। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग अकीदा रखते हैं, बहुत से लोग सोच रखते हैं, और बहुत से लोग क्या हैं, परेशान हैं कि जब वो मरेंगे तो कहाँ जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम मरेंगे तो अगले जन्म में हम बांदर या बिल्ली या किसी और जानवर सूरत में पैदा होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस वाहद ऐसी हकीकती सच के बारे में बयान करती है कि हमारे साथ क्या होगा, हम मुर्दों में से जिंदा किए जाएंगे। और तीन मुर्दों को यसु मसीह ने जिंदा किया, जिसका खुदावंद का कलाम गवाह है, और जिनमें आप जान सकते हैं कि पहला मुर्दा, जब यसु मसीह ने बेवा को, उस बेवा को देखा जिसका इकलौता बेटा मर गया था, तो यसु मसीह ने जनाजे को रोककर का किया, क्या किया? उसे जिंदा किया। इस हवाले को नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कर सकती हैं। लूका 7 बाप उसकी 11 से 17 आयत, यहां पर यसु मसीह ने बेवा के बेटे को जिंदा किया। फिर यसु मसीह ने यायर, जो सरदार काहिन था, जो हैकल में खिदमत करता था, यसु मसीह ने उसकी बेटी को, यायर की बेटी को जिंदा किया, जो 12 बरस की थी, जो बीमार थी, जो मर गई। और यसु मसीह ने अपने शागिर्दों को और उसके माँ बाप को लिया और उससे कहा कि उठ, और वो जिंदा हो गई। ये हवाला आपको लूका 8 बाप उसकी 49 आयत से 56 आयत में मिलेगा। और फिर तीसरा मुर्दा, मेरे साथ इस हवाला को निकालें, कि जब हम जिंदे जिंदा किए गए हैं रूहानी तौर पर, तो हमारा इस जमीन पर मकसद क्या है? यसु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, आप सब इससे वाकिफ हैं। यसु मसीह ने लाजर को, जो 4 दिन का मुर्दा था, जिंदा किया अपना कलाम करके के ए लाजर कब्र से बाहर निकला। ये इस बात की तरफ इशारा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो यसु मसीह अपना कलाम करेगा, और फिर मुर्दे जी उठेंगे, और जो कोई उस पर ईमान रखते हैं उसकी हजूरी में हाजिर होंगे, और अब्दी तौर पर उसकी प्रस्तुति करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, और जो हमने काम, जो खिदमत हमने जमीन पर की होगी, उसका अजर हमें मिलेगा। सो यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाप मेरे साथ निकालें। यूहन्ना की अंजील 12वां बाप, 11वें बाप में आप देख सकते हैं 41वीं 46वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक यसु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। सो लाजर को जिंदा करने के बाद क्या हुआ? 12वां बाप, यूहन्ना की अंजील 12वां बाप उसकी 1-2 आयत को देखेंगे कि यही बात यसु मसीह चाहता है कि हम भी करें। और यहां पर लिखा है, यूहन्ना की अंजील 12वां बाप उसकी 1 आयत, फिर यसु फसा से 6 रोज पहले बैतानिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यसु ने मुर्दों में से जलाया था। सादा तौर पर लाजर, जिसे यसु मसीह ने मुर्दों में से जलाया, जो 4 दिन का मुर्दा था, जिसके बारे में लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, जिसके बारे में लोग सोचते थे कि नहीं, लेकिन यसु मसीह ने उसे जिंदा किया। और दूसरी आयत पर गौर करें, वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया, और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। ये इस बात की तस्वीर है कि जब लाजर मुर्दों में से जी उठा तो उसकी यसु मसीह के साथ क्या थी, रफाकत और शराकत, उठना बैठना खाना पीना। बाइबल मुकद्दस इसे रफाकत कहती है। हम भी मुर्दों में से जिंदा किए गए हैं, हमें नई जिंदगी मिली है, इसीलिए आप हर सुबह यहां पर मौजूद होते हैं कि यसु मसीह से बातचीत करें। और मैंने कल कहा था कि जिंदा लोग बातचीत करते हैं। सो हम जिस्मानी तौर पर तो जिंदा हैं, जिस्मानी तौर पर लाजर की तरह इस जमीन पर, उस वक्त जिस तरह लाजर जमीन पर था, आज हम जमीन पर हैं, और इसलिए हैं कि यसु मसीह के साथ हमारी रोज रफाकत हो, यसु मसीह के साथ बातचीत हो। आप यसु मसीह से बात कर सकती हैं, कर सकते हैं किसी भी वक्त, आटा गूंथते हुए, चाय बनाते हुए, रोटी पकाते हुए और कपड़े धोते हुए, आप यसु मसीह से बातचीत कर सकती हैं। आप काम पर जाते हुए, मुझे याद है कि जब मैं मंडी में काम करता था तो हर सुबह तड़के, जैसे हम जबूर गाते हैं, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया, मैं हर सुबह यसु मसीह से बातचीत करता था और करता हूं। इसलिए आप बहुत ही मुबारक हैं, और यही पालूस रसूल चाहता है कि मसीह यसु में शामिल करके उसके साथ जलाया है और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया है। अब इस जमीन पर हमें हर रोज उसके कलाम की रोटी को खाने की जरूरत है, ताकि हमारे पट्ठे मजबूत हों, ताकि हम मसीही जिंदगी गुजार सकें। सो खुदावंद आपको बरकत दे, और इस रोटी के बारे में अपने बच्चों को, माँ बाप बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, खामंद को, पड़ोसियों को, सबको बताएं और उनको बेदार करें कि खुदावंद के घर में आएं, क्योंकि लाजर की जिंदगी, वो मुर्दों में से जी उठा और फिर उसकी यसु मसीह के साथ रफाकत थी। हमारी भी हर रोज रफाकत और शराकत होनी चाहिए। सो खुदावंद आपको बरकत दे, आए हम दुआ करें। खुदा बाप, हम सबको कुवत और ताकत दे के आज के दिन में हर रोज की तरह तुझसे बातचीत करें, अपने दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में तुझे पुकारें, क्योंकि तू कलाम करता है तो अंधे आंखें पाते हैं, तू कलाम करता है तो दिल जो टूटे हुए हैं, कमज़ोर हैं, हौसला पाते हैं। सो आई हुई तमाम बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, और जो नहीं आए, जो इस रोटी से खुदावंद खुदा भूखे रह गए हैं, उनको बेदार कर, ताकि वो मसीही ज़िंदगी के जायका को, मज़े को और बरकत को ज़ाया ना करें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।